مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، آج الصباح سے طبیعت ناساز ہے، اور پچھلی پانچ چھ نمازوں میں مسجد بھی حاضر نہیں ہو سکا، کچھ بخار اور پیٹ کی تکلیف کی شکایت رہی جو اب بھی چل رہی ہے. الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن آپ حضرات کی برکت ہے کہ اس وقت یہاں حاضر ہونے کی توفیق ہو گئی، اور یہ سوچا کہ جتنی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات کہلوا دیں، ان کا کرم ہے، ان کا انعام ہے، اور دین کی بات کسی لمبی چوڑی تقریر کی محتاج بھی نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی کہنے والے میں اخلاص عطا فرمائیں، اور سننے والوں میں قبول عطا فرمائیں، تو تھوڑی سی بات بھی مؤثر اور فائدہ مند ہو جاتی ہے. اگر خدا نہ کرے ان میں سے کوئی چیز مفقود ہو تو لمبی چوڑی تقریریں بھی بے فائدہ ہوتی ہیں. اس لیے سوچا کہ جتنی دیر تک طاقت ہوگی اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ جب تک تحفظ کروائیں گے تو عرض کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے اس کو نافع اور مفید بنائے. پچھلے اتوار کو ایک حدیث میں نے آپ حضرات کو سنائی تھی اور اس کی کچھ تشریح پیش کی تھی، جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے اتحاد و اتفاق اور بھائی چارے کی فضیلت بیان فرمائی. صلاح و ذات البین، یعنی آپس کے اچھے تعلقات، اور یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان اگر کبھی کوئی ناچاکی ہو جائے، کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، تو ان کے درمیان دوبارہ بھائی چارہ اور محبت پیدا کرنے کی جو کوشش ہوتی ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے، روزے سے، صدقے سے بھی افضل قرار دیا. یاد ہے نا پچھلی مرتبہ کی حدیث، اور ساتھ ہی یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی آپس کی ناچاکیاں اور لڑائی جھگڑے जिसको फसाद जातिल बैन से ताबीर फरमाया है, आपस का फसाद, आपस का झगड़ा, ये मोड़ देने वाली चीज है। और फरमाया कि यह सर को मोड़ने वाली चीज नहीं बल्कि दीन को मोड़ने वाली है। उसके नतीजे में सबका दीन खराब होता है, दीन बर्बाद होता है। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। तो मैंने पिछले हफ्ते ये भी अर्ज किया था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ इस बात का हुक्म दिया है कि आपस में मोहब्बत से रहो और लड़ाई झगड़े से, मुनाफरतों से हत्तल इम्कान परहेज करो, तो वहाँ उसके तरीके भी बताए हैं और जो चीज़ें बाहमी झगड़ों और मुनाफरतों का सबब बनती हैं, जिनकी वजह से झगड़े पैदा होते हैं, जिनकी वजह से नफरतें पैदा होती हैं, उनकी भी निशानदेही फरमाई है। उनमें से एक उसूली बात पिछले हफ्ते मैंने ये अर्ज की थी कि हुज़ूर नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो कुछ अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो, जो अपने लिए नापसंद करते हो अपने भाई के लिए भी नापसंद करो। और ये बड़ा अजीम उसूल बता दिया कि हर काम करते वक्त ये जायजा ले लो कि अगर मैं होता तो क्या करता और मेरे साथ ये मामला किया जाता तो मुझ पर क्या गुजरती। अगर हर आदमी इस उसूल को अपना ले तो दूसरों के साथ ज्यादतियों का दरवाजा खुद ही बंद हो जाए। अब एक हदीस आगे है जिसमें बाहमी मुनाफरतों और झगड़ों से बचने का एक और अजीब गरीब तरीका बताया है, वो अब मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على الأذى। حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حضرت عمر کے صاحبزادے बड़े दर्जे के सहाबे के आम में से हैं। वो रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन दो किस्म के हैं। एक मोमिन वो है कि जो लोगों से अलग थलग होकर बैठ गया, लोगों से उसने कनारकशी तैयार कर ली, किसी मस्जिद में बैठ गया, किसी मदरसे में बैठ गया, किसी इबादतगाह में बैठ गया, एहतिकाफ कर लिया और ये तय कर लिया मैं बाहर निकलूंगा ही नहीं ताकि लोगों से सबका ही पेश ना आए और अपनी तन्हाई में अल्लाह अल्लाह करता रहूंगा, इबादत करता रहूंगा। एक तो वो आदमी है और एक वो आदमी है कि जिसने अलहदगी इख्तियार नहीं की, तन्हाई इख्तियार नहीं की बल्कि लोगों के साथ मिला जुला रहा, लोगों के साथ उठता बैठता भी है, ताल्लुकात भी हैं, दोस्तियां भी हैं, रिश्तेदारियां भी हैं, व्यवसाय के मामलात भी हैं, हर तरह के मामलात भी करता है। और जब ये करता है तो लोगों से तकलीफें भी पेश आती हैं, लेकिन जब तकलीफें पेश आती हैं तो उन पर सब्र करता है। तो फरमाया कि ये दूसरा आदमी जो कि लोगों के साथ मिला जुला रहता है और लोगों की तरफ से जो तकलीफें पहुंचती हैं उन पर सब्र करता है, वो बदरजहा बेहतर है उस शख्स से कि जो लोगों से मिलता नहीं और उसके नतीजे में उनकी तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे पर सब्र करने का भी कोई मौका उसके सामने नहीं आता। तो जो आदमी लोगों से मिला जुला रहता है, तकलीफें पहुंचती हैं, तकलीफें पहुंचकर उन पर सब्र करता है, तो उसकी बड़ी फजीलत बयान फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ये तो आपको पता ही है कि हमारे दीन ने रहबानियत की तालीम नहीं दी ईसाई मजहब की तरह। ईसाइयों के यहाँ अल्लाह तक पहुँचना उस वक्त तक मुमकिन नहीं है, अल्लाह ताला की का कुर्ब हासिल करना उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि इंसान दुनिया के सारे कारोबार को न छोड़े, अपने ताल्लुकात को खरबाद न कहे, रहबानियत की जिंदगी न गुजारे। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम ये दी कि लोगों के साथ मिले जुले रहो और फिर लोगों से पहुंचने वाली तकलीफों पर सब्र करो। अब ये बड़ी अजीब गरीब तालीम है अगर गौर करो तो। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ लोगों के साथ मिले जुले रहने और लोगों की तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ पर सब्र करने दोनों को एक साथ इस तरह जिक्र किया है। ये दोनों काम एक साथ जरूर होंगे, जब लोगों से मिलोगे जुलोगे और उनके साथ रहोगे तो उनसे तकलीफ तुम्हें जरूर पहुंचेगी। ये पहले ही इस हदीस में फर्ज किया गया है, दोनों चीजों को साथ जिक्र किया गया, लोगों के साथ मिले जुले रहना और उनकी तरफ से तकलीफ पहुंचना, ये दोनों लाजिम और मलजूम हैं। क्या मतलब कि जब भी तुम्हारा किसी इंसान से, किसी भी दूसरे इंसान से कोई वास्ता पेश आएगा तो मुमकिन नहीं है कि कभी न कभी उस शख्स से तुम्हें तकलीफ न पहुंचे, लाजमन पहुंचेगी। खा वो कितना ही तुम्हारा अजीज हो, कितना ही तुम्हारा दोस्त हो, कितना ही तुम्हारा खैरखा हो, तकलीफ जरूर पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी उसकी वजह भी समझ लो। इसलिए पहुंचेगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब से आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक्त से लेकर आज तक कितने इंसान पैदा हुए, जरा सोचो, करोड़ों अरबों खरबों पद्मों कोई गिनती है? कोई आदमी है गिनती कर सकता है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कितने इंसान पैदा हुए हैं? कोई गिनती कर सकता है? अनगिनत बेशुमार, कोई गिनती नहीं। अल्लाह, करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कितने इंसान पैदा हुए और रोज पैदा हो रहे हैं और आगे भी पैदा होते रहेंगे कयामत तक, होते हैं कि नहीं? इतने इंसान पैदा हो गए आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से लेकर आज तक, और ये चेहरा जो है तुम्हारा ये एक बालिश का लंबा चेहरा है ना, और इसी चेहरे में आंख भी है, नाक भी है, मुंह भी है, दांत भी है, कान भी है, रुखसार भी है, ठोड़ी भी है। जो भी पैदा होता है उसके सब ये चीजें जरूर होती हैं, होती है कि नहीं होती? लेकिन इतने अरबों पद्मों इंसानों के चेहरे जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए, इन अपने अरबों पद्मों इंसानों में से कभी दो आदमियों का चेहरा बिल्कुल 100% एक जैसा नहीं होता, होता है नहीं होता? अल्लाह ताला की कुदरत देखो, कुदरत कामिला के इतने जरा सी जगह, एक बालिश की लंबाई और आधी बारिश की चौड़ाई, और ये भी नहीं कि भाई किसी के नाक हो, किसी के ना हो, किसी के कान हो, किसी के नहीं, सबके होंगे, कान भी सबके होंगे, आंखें भी सबकी होंगी, नाक भी सबके होंगे, होंठ भी सबके होंगे, दांत भी सबके होंगे, रुखसार भी होंगे, पेशानी भी होगी, बाल भी होंगे, थोड़ी भी होगी, हर चीज होगी हर एक आदमी, लेकिन किसी भी दो आदमियों का चेहरा एक जैसा नहीं मिलेगा, हर एक का अलग अलग है, हर एक का अलग अलग है, हर एक का अलग अलग है। ऐसा अजीम कारखाना है कि नए जो पैदा हो रहे हैं उनके अंदर भी, ये नहीं कि पहला जो पैदा हो गया, अब जो पैदा कोई पैदा होगा वो पिछली किसी की कॉपी हो जाए, किसी की नकल हो जाए, नहीं, वो अपना चेहरा खुद लेके आएगा। इस तरह इम्तियाज पैदा कर दिया हर इंसान में और दूसरे इंसान में कि चेहरे के नकूश देखकर फौरन पता लग जाएगा ये फुला है, ये फुला है। हालांकि ये भी अजीब अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा है कि मुख्तलिफ नस्लों के अंदाज और नकूश जो हैं उनके अंदर एक माबिहिल इश्तराक है, एक माबिहिल इम्तियाज है। यानी एक चीज ऐसी है कि जो सब में मुश्तरक है। अफ्रीकी नस्ल के लोग होंगे तो दूर से पहचान लिए जाएंगे ये अफ्रीकी मालूम होता है ये आदमी। यूरोपियन होगा तो अलग से पहचान लिया जाएगा ये यूरोप का है। बावजूद देखे उनके अंदर भी फर्क है, कोई दो एक जैसे नहीं है, लेकिन माबिहिल इश्तराक भी है, माबिहिल इम्तियाज भी है। ये अल्लाह जल जलालहु की अजीब व गरीब कुदरत है, कहां कोई इंसान इस कुदरत का इहाता करेगा। हर इंसान का चेहरा मुख्तलिफ, हर इंसान की आंखें मुख्तलिफ, और तो और ये तुम्हारे उंगली के पोरे हर इंसान के दूसरे इंसान से अलग है। ये जो अंगूठा लगवाते हैं जब किसी से दस्तखत करने नहीं आते किसी को, तो क्या करते हैं? अगर दस्तखत करने आते भी हो तब भी अंगूठा लगवाया जाता है कागजात के ऊपर। क्यों लगवाते हैं? इस वास्ते के अंगूठे के अंदर जो छोटी छोटी लकीरें हैं, छोटी छोटी लकीरें, ये लकीरें ऐसी हैं कि किसी इंसान की लकीरें दूसरे इंसान से नहीं मिलती। हर एक की अलग है, इतनी बारीक, जो यूं देखो तो नजर भी ना आए, खुर्दबीन लगा के देखो शायद नजर आ जाए, वैसे नजर भी नहीं आती। और सब मिला मिला के देखो अपने अंगूठे तो सबकी लकीरें एक जैसी नजर आएंगी देखने में। लेकिन ये बात तयशुदा है, आलमी तौर पर मुसल्लम है, सारी दुनिया मानती है, सारे साइंसदान मानते हैं कि दो आदमियों के अंगूठे की ये लकीरें एक जैसी नहीं है। लिहाजा जब किसी ने अंगूठा लगा दिया तो वो अंगूठे की लकीरें और किसी कागज पर सब्त हो गई तो पता चलेगा कि ये आदमी वही है, कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा अगर होगा तो उसके अंगूठे के निशान मुख्तलिफ हो गए। यहां तक के माहिरीन पैदा हुए हैं जिनका दावा यह है कि हमारे सामने अंगूठा लगा दो किसी आदमी का अंगूठा, हम उसको बड़ा करके उसकी लकीरें देखेंगे और लकीरें देखकर उस पूरे इंसान के सर से लेकर पांव तक सारे खद्दोखाल का नक्शा खींच सकते हैं। वो अंगूठे की लकीरें बता रही है कि इसकी आंख कैसी होगी और नाक कैसी होगी और कान कैसे होंगे और हाथ कैसे होंगे, वो अंग बता रहे। कोई दूसरे इंसान में वो खसाइस नहीं पाए जा सकते जो इसमें। मैंने अपने वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह से सुना, अल्लाह माजिद हजमाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब का रसल्लाह तआला से सुना कि कुरान करीम में सूरह क़यामत में एक आयत है जिसमें फरमाया, बारी ताला ने फरमाया काफिरों का जिक्र करते हुए, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियां जमा नहीं कर सकेंगे? ये काफिर जो क़यामत के मुनकिर हैं, आखिरत के मुनकिर हैं, वो ये कहा करते थे कि जब हम मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, हमारी हड्डियां जो है वो तक खत्म हो जाएंगी, चूड़ा हो जाएंगी, तो कहां से हमें दोबारा जिंदा किया जा सकेगा, कौन जिंदा करेगा? तो कुरान कहता है कि इंसान क्या ये गुमान करता है कि हम उसकी हड्डियां दोबारा जमा नहीं कर सकेंगे? बला कादरीन अला अन नुसव्विया बनाना, क्यों नहीं, हम तो इस बात पर भी कादिर हैं कि उसकी उंगली के पोरे को दोबारा बना दें वैसा ही वैसा, उंगली के पोरे को वैसा ही वैसा बना दें। जो इस कायनात में बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी नहीं कर सकता कि वैसे ही अंगूठा बना दे, वो हम हाजिर हैं कि ये काम करें। वो बदशरीर कहा करते थे कि भाई अल्लाह ताला तो ये भी कह सकते थे कि हम उस बात का हाजिर हैं कि उसका चेहरा दोबारा बना दें, उसका हाथ दोबारा बना दें, उसके पांव दोबारा बना दें, लेकिन खास तौर से पोरे का जिक्र फरमाया कि उंगली के पोरे को हम दोबारा बना दें। तो मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि एक नौ मुस्लिम साइंटिस्ट इस आयत को पढ़कर मुसलमान हुआ कि ये बात सिवाय खालिक कायनात से कोई और नहीं कह सकता कि हम उस कोरे को दोबारा बनाए। ये सिर्फ वही कह सकता है जिसने कायनात पैदा की हो, जिसने इंसान को बनाया और जिसके इंसान के एक कुल को पैदा किया। तो इस वास्ते मैं अर्ज कर रहा था कि कोई इंसान दूसरे इंसान जैसा नहीं है अपनी जाहिरी शक्ल सूरत में। अगर दो एक जैसे हो जाएं तो ताज्जुब होता है कि देखो भाई ये दो आदमी बड़े हमशक्ल हैं, उस पर ताज्जुब होता है। अलग होने में कोई ताज्जुब नहीं होता, इस वास्ते के सारे इंसान अलग ही अलग हैं। अगर कभी इत्तेफाक से दो आदमी एक दूसरे के मुशाबे हो जाएं तो कहेंगे देखो ये आदमी दो जा रहे हैं, ये बिल्कुल एक जैसे हमशक्ल जैसे हैं, उस पर ताज्जुब करते हैं लोग। हालांकि ताज्जुब की बात यह है अगर हम शक्ल हो सारे इंसान तो ताज्जुब की बात ना होती। अरे भाई छोटी सी जगह है, वही आगा है, तो एक ही जैसे होने ही चाहिए। लेकिन ताज्जुब तो इस पर है कि ये अरबों खरबों इंसान पैदा हो गया और इनकी इनकी सूरतें एक जैसी नहीं होती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला हिकमत बालगा ऐसी है कि उसने हरेक इंसान की सूरत मुख्तलिफ बनाई, मर्द की अलग औरत की अलग, मर्द की अलग औरत की अलग, और हरेक सिनु के अंदर एक दूसरे से इम्तियाज भी मौजूद, एक दूसरे से इश्तराक भी मौजूद। तो जिस तरह दो इंसानों के चेहरे जब मुख्तलिफ नहीं मुश्तरक नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, तो फिर दो आदमियों की तबीयतें कैसे मुत्तफिक हो सकती हैं? जब जाहिर उनका एक जैसा नहीं तो तबीयतों में भी फर्क होगा। किसी की तबीयत कैसी है किसी की कैसी है, किसी का मिजाज कैसा है किसी का मिजाज कैसा है, किसी की पसंद कुछ है किसी की पसंद कुछ है। हर इंसान की पसंद मुख्तलिफ, हर इंसान का मिजाज मुख्तलिफ, हर इंसान की तबीयत मुख्तलिफ। तो इस तबीयत के मुख्तलिफ होने की वजह से कभी ऐसा नहीं होता कि दो आदमी जिंदगी गुजार रहे हों और एक साथ रहते हों और उनको कभी दूसरे से तकलीफ ना पहुंचे, ऐसा मुमकिन ही नहीं। जिस तरह ये मुमकिन नहीं, जिस तरह ये मुमकिन नहीं कि दो आदमियों के चेहरे एक जैसे हों, इसी तरह ये बात भी मुमकिन नहीं कि दो आदमी एक साथ रह रहे हों, दोनों के ताल्लुकात हों और कभी भी एक को दूसरे से तकलीफ न पहुंचे। तकलीफ पहुंचेगी जरूर, कभी जिस्मानी तकलीफ पहुंचेगी, कभी रूहानी तकलीफ पहुंचेगी, कभी नफ्सियाती तकलीफ पहुंचेगी, कभी खिलाफ तबा बात होगी दूसरे की तरफ से बुरी लगेगी तो उनसे ही पहुंच। हद तो यह है कि इस कायनात में अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हजरात सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन से ज्यादा अफ़ज़ल मखलूक इस जमीन और आसमान की निगाहों में नहीं देखी। अंबिया किराम के बाद सहाबे किराम से ज्यादा अफजल, उनसे ज्यादा मुत्तकी, उनसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले, उनसे ज्यादा ईसार पेशा, उनसे ज्यादा एक दूसरे पर जान देने वाली कोई मखलूक पैदा नहीं हुई न होगी आएगा सहाबे किराम। लेकिन तबीयतें सहाबे किराम के लिए मुख्तलिफ, उनके आपस में भी मिजाज में फर्क था। कोई रूए जमीन की बीवी अपने शौहर के लिए इतनी वफादार और इतनी मोहब्बत करने वाली और इतना ख्याल रखने वाली नहीं हो सकती जैसे कि उम्मातुल मोमिनीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। यह हो सकती है, लेकिन उनको भी तबीयत के खिलाफ बातें पेश आ जाती थी। हुजूर अफजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारोकात उनकी तबीयत के खिलाफ होने की वजह से कुछ गरानी भी हो जाती थी। एक मरतबा आपने पूरे एक महीना ऐसा गुजारा इस गरानी की वजह से कि यह कसम खा ली थी कि एक महीने तक मैं अपने अजवाज मुतहरात के पास नहीं जाऊंगा। एक महीना गुजारा आपने साल इस वास्ते के गरानी बहुत पैदा हुई थी तबीयत के खिलाफ होने की। चलो हुजूर को तो हुई थी साथ हजरात अजवाज मुतहरात की तरफ से, अजवाज मुतहरात को हुजूर की तरफ से भी हो जाती थी और हुजूर अफजल नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस में कि हजरत आयशा को फरमाया क्या आयशा मुझे पता चल जाता है कि जब तुम मुझसे राजी होती हो जब मुझसे नाराज होती हो मुझे पता चल जाता है। कैसे हुजूर? पता इस तरह चल जाता है कि जब मुझसे खुश होती हो तो कसम जब तुम खाती हो तो ये कहती हो कि वरब्बी मोहम्मद यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार की कसम यूं खाती हो कसम। और जब मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो रब्बे इब्राहिम की कसम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के परवरदिगार की कसम ये कसम खाती हो। तो हजरत आयशा फरमाती है कि या रसूल अल्लाह ला अहजुरु इल्ला इस्मक क्या सुना ऐसे मौके पर मैं सिर्फ आपका नाम ही छोड़ती हूँ आपकी मोहब्बत दिल से नहीं जुदा होती आपका सिर्फ नाम ही छोड़ती हूँ ये फरमा रहे हैं हजरत आयशा फरमा रहे हैं। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी के साथ मोहब्बत शफ़क़त मेहरबानी करने वाला कोई हो सकता है? और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला के साथ आपकी मोहब्बत का जो आलम था वो कोई मक्खी चीज नहीं। लेकिन उसके बावजूद हजरत आयशा को बावकात कुछ गरानी पैदा हो जाती थी और उस गरानी का एहसास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हो रहा है और आप फरमा रहे हैं कि जब तुम ऐसा होता है तो तुम मेरा हवाला दिए बगैर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेकर कसम खाती हो तो वहां भी हो रहा है। अब कोई ये ना समझे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाना तो अल्लाह कुफ्र है। तो हजरत आयशा से अगर तकलीफ पहुंची नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कितनी बुरी बात हुई। अरे ये मामलात अल्लाह तबारक व तआला ने हैसियतें अलग अलग रखी। उनको जो गरानी या कुछ ख्याल होता था वो एक शौहर और बीवी की हैसियत में, बीवी को जैसे शौहर पर नाज होता है शौहर को बीवी पर जैसे नाज होता है उस नाज के आलम में इस किस्म की बात हो जाया करती थी। उसको मनसब रिसालत से कोई ताल्लुक नहीं लेकिन हो जाती थी। मैं आज ये कर रहा हूं कि वहां भी खिलाफ तबा उमूर पैदा हो जाते थे वहां पर भी खिलाफ तबा। और आगे बढ़ जाओ हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला क्या कहते हैं इनको शेखैन हजरत शेखैन। और अंबिया किराम के बाद इन दो बुजुर्गों से ज्यादा अफजल इंसान इस रूए जमीन पर पैदा नहीं हुए। और दोनों का आलम यह था नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक का कि सहाबे किराम कहते हैं कि दोनों के नाम हमेशा एक साथ आया करते थे। दोनों के नाम एक साथ हम बोला करते थे कि जा अबू बकर व उमर जहाबा अबू बकर व उमर फाल अबू बकर व उमर खरज अबू बकर व उमर जहां नाम आ रहा है दोनों का एक साथ आ रहा है। दोनों इस तरह यक जान दो कालम थे कि हर वक्त नाम ही नहीं कहता था। साहब हजूर अब्दुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां कोई मसला पेश आया मशवरा करना हुआ भाई जरा अबू बकर उमर को बुला लाओ। कभी दोनों में जुदाई का तसव्वुर नहीं होता था दोनों एक साथ रहते थे। और हजरत उमर के इज्जत करने का आलम यह था अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की कहते थे कि एक मरतबा कहा कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला से कि आप मेरी जिंदगी की सारी इबादतें मुझसे ले लीजिए सारे आमाल मुझसे ले लीजिए और एक रात जो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारे सौर में गुजारी है वो उसके बदले में वो मुझे दे दीजिए। तो ये अजमत محبت کا عالم تھا دونوں کے درمیان. لیکن جیسا میں نے عرض کیا طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں, طبیعتوں میں اختلاف ہوتا ہے. ایک مرتبہ ہو جاتا تھا, ان میں بھی اختلاف ہو جاتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ دونوں کے درمیان کوئی بات چیت ہو رہی تھی, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہہ دی, حضرت فاروق اعظم ناراض ہو گئے, حضرت عمر ناراض ہو گئے. ناراض ہو کر پھر روانہ ہو گئے حضرت صدیق اکبر کے پاس سے. حضرت صدیق اکبر پیچھے پیچھے چلے ان کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی میرا مطلب یہ تھا, یا کچھ ان کو راضی کرنے کے لیے. مگر حضرت فاروق کو بہت ہی ناگوار ہو گئی بات, تو جا کر آگے آگے حضرت عمر جا رہے ہیں پیچھے پیچھے صدیق اکبر, بھائی ذرا بات تو سنو بات تو سنو. یہ کہتے کہتے حضرت عمر جو ہیں وہ گھر میں داخل ہو گھر میں داخل ہو گئے, گھر میں جا کے دروازہ بند کر. حضرت عمر اب بات کا دروازہ ہی بند کر. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو ناراض ہو گئے, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور آ کر ابھی جا کے بیٹھے ہی تھے, بیٹھے بھی نہیں تھے, مجلس میں آئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور نے دیکھا تو چہرے پر کچھ آثار تھے یا بدر وحی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, تو جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ان سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا کہ اما ہادہ فقد غامر, یہ تمہارا جو دوست آ رہا ہے صدیق اکبر کے بارے میں اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ صاحب جو آ رہے ہیں ایسے یہ کہیں سے لڑ کے آ رہے ہیں, یہ کسی سے کچھ جھگڑا کر کے آ رہے ہیں. خیر بیٹھ گئے صدیق اکبر. تو اتنے میں جب حضرت عمر نے وہاں تو دروازہ بند کر لیا تھا, اب جب گھر میں چلے گئے تنہائی میں تو بڑا ندامت ہوئی کہ میں نے بہت برا کیا کہ حضرت صدیق اکبر سے اول تو ناراضگی کا اظہار کیا, اوپر سے وہ پیچھے آ رہے تھے میں دروازہ بند کر لیا اور وہ چلے گئے ہوں گے, تو بڑی ندامت ہوئی, بڑے شرمسار ہوئے کہ کتنا برا کام کیا میں نے. تو وہ بھی پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے کہ اب جا کے مناؤ کسی طرح سے دیکھا کہ بڑا دیتا. وہاں پہنچے تو دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور وہاں سے جی کے گھر بیٹھے ہیں. اب جب حضرت فاروق اعظم آئے تو انہوں نے آ کر بتانا شروع کیا, اپنی ندامت کا اظہار کرنا شروع کیا کہ رسول اللہ ایسا مجھ سے ہو گیا. کل صدیق اکبر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ نہیں, مجھ سے غلطی ہوئی تھی, مجھ سے غلطی, غلطی مجھ سے زیادہ ہوئی تھی, یہ ان سے نہیں ہوئی, مجھ سے زیادہ غلطی ہوئی تھی, تو آپ ان کو معاف کر دیجئے, اور غلطی اصل میں میری تھی, مجھ سے زیادہ غلطی تھی, مجھ سے زیادہ. حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں, میں تو بڑا ایسا قصہ قصہ ہوا تھا اور میں نادم ہوں شرمسار ہوں. اور تو حضرت صدیق اکبر کا نہیں آ رہا اللہ, مجھ سے غلط ہے, مجھ سے زیادہ غلطی ہوئی, مجھ سے زیادتی ہوئی, مجھ سے ظلم ہوا. اللہ اس وقت عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت فاروق اعظم اور سارے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ حل تارکونی صاحبی, حل تارکونی صاحبی, کیا میرے ساتھی کو میرے لیے چھوڑو گے بھی کہ نہیں. ان صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا میرے ساتھی میرے دوست کو میرے لیے چھوڑو گے کہ نہیں. یہ وہ شخص ہے کہ میں نے جب کہا تھا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں نے کہا تھا کہ اے لوگوں میں تم سب کے لیے اللہ کے رسول بن کر آیا ہوں, تو تم نے کہا کہ کذب تھا, اس نے کہا کہ صدق تھا. تم نے اس وقت کہا تھا کہ تم غلط کہتے ہو, یہ تنہا آدمی تھا جس نے اس وقت کہا تھا کہ تم سچ کہتے. عرض یہ کر رہا تھا کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے انسان کہ جن کا جب ذکر آتا ہے تو ابو بکر عمر, ابو بکر عمر, ابو بکر عمر ہر جگہ, لیکن طبیعتوں میں ان کے بھی اختلاف تھا. اتنا اختلاف تھا کہ کبھی کبھی یہ قصے بھی اس طرح کے پیدا ہو گئے. تو کوئی دو انسان ایسے نہیں ہیں کہ جن کی طبیعتیں یکساں ہوں, ایک جیسی ہوں, جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی دوسرا بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا. کوئی باپ یہ چاہے کہ بیٹا میرے لیے 100% میری مرضی کے مطابق ہو جائے, نہیں ہو سکتا.
कोई बेटा ये चाहे कि बात मेरे लिए 100% मेरी मर्जी के मुताबिक हो जाए, नहीं हो सकता। कोई शौहर ये चाहे कि मेरी बीवी मेरे मतलब के 100% मुताबिक हो जाए, नहीं हो सकता। कोई बीवी ये चाहे कि शौहर मेरे लिए 100% मेरी मर्जी के मुताबिक हो जाए, नहीं हो सकता। तो लिहाजा जब आदमियों के साथ रहना होगा तो तकलीफें भी पहुंचेंगी, ये फरमा रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु। आदमियों के साथ रहना और आदमियों से तकलीफ पहुंचना, ये दोनों चीजें लाजिम और मलजूम है। एक चीज को दूसरे से जुदा किया ही नहीं जा सकता। लिहाजा अगर आदमियों के साथ रहना है तो ये सोच कर रहना होगा कि इनसे तकलीफ भी पहुंचेगी और उस तकलीफ के ऊपर मुझे सब्र भी करना होगा। अगर सब्र नहीं करोगे तो लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, कितने होंगे, फसाद होंगे, फसाद उड़ाते बैन होगा, जो दीन को मूंग देने वाली चीज। लिहाजा जिस किसी से ताल्लुक हो, वो रिश्तेदारी का हो, वो दोस्ती का हो, वो जौजियत का ताल्लुक हो, कैसा भी हो, लेकिन ये समझ लो कि इसमें तकलीफें भी पहुंचेंगी और उन तकलीफों पर मुझे सब्र करना होगा और उनको जरिया मुस्तकिल नाचाकी का नहीं बनना। ठीक है, कभी कभी जब ये होता है तकलीफें भी पहुंचती हैं, थोड़ी बहुत कभी कभी आपस में तलखी भी थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन उसको मुस्तकिल जरिया नाचाकी का, मुस्तकिल जरिया मुनाफरत का ये बनाना, ये मुमकिन, ये जो है ये फरमाया के दीन को मूंद देने वाली चीज। अब क्या करें भाई, तबीयतें तो खिलाफ होती है। जब तबीयतें हैं ही मुख्तलिफ तो दूसरे से तकलीफ पहुंच रही है, तो तकलीफ तो पहुंच रही है, क्या इलाज करें उस तकलीफ का? अब जो तकलीफ पहुंच रही है तो उस पर कैसे तसल्ली दें अपने आप को, उस तकलीफ से अपने आप को कैसे बचाएं और कैसे फिर मोहब्बतें पैदा करें बावजूद की तबीयत के खिलाफ बात हो रही है। उसका नुस्खा भी बता दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई बात छोड़कर नहीं गए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब बात वाजे करके बयान करवाया और ये बयान फरमाया मियां बीवी के ताल्लुकात के बारे में, मियां बीवी के ताल्लुकात के बारे में। और सबसे ज्यादा जो खिलाफ तबा उमूर पेश आते हैं वो मियां बीवी के ताल्लुक में ही आते हैं। जितना कुर्ब ज्यादा होगा उतने ही तबीयत के खिलाफ बातें भी ज्यादा पेश आने का इम्कान होगा, और मियां बीवी के दरमियान जो कुर्ब होता है वो और किसी रिश्ते में नहीं होता। इस वास्ते वहां पर तकलीफ पहुंचने के इम्कान भी ज्यादा हैं बनिस्बत और जगहों में। जब है तो क्या करें, कुर्बान जाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ऐसा नुस्खा बता दिया। अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाए अल्लाह यफ्रुक मुमिन मुमिनतन इन सखीता मिनहा खुलूकन रजिया मिनहा आखर औ कमा قال صلى الله عليه وسلم। कोई मोमिन मर्द किसी मोमिन औरत से बुग्ज न रखे, यानी मुराद है कोई शौहर अपनी बीवी से मुस्तकिल बुग्ज न रखे। क्यों ना रखे? फरमाया कि इन सखीता मिनहा खुलूकन रजिया मिनहा आखर, अगर उसकी किसी तबीयत की किसी बात को वो नापसंद समझेगा तो दूसरी किसी बात को पसंद भी करेगा। क्या मतलब? कि जब तुम्हारे तबीयत के खिलाफ कोई मामला पेश आता है तो तुम नाराज होते हो और बुरा मनाते हो, उसको तो लिए बैठे रहते हो, या यूं करती है, यूं करती है, यूं करती है, यूं करती है, ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबी है। लेकिन खुदा के बंदे ये भी सोचो कि उसमें कुछ अच्छाइयां भी होंगी। तो जब कभी देखो कि उसकी खिलाफ तबा बात कोई पेश आ रही है बुराई की, जो तुम्हें बुरी लग रही है, तो तसव्वुर करो उसकी उस बात का जो उसकी पसंदीदा है, अच्छी बात कि भाई अगर ये बुराई है इसके अंदर तो दूसरी अच्छाई भी तो है। जब अच्छाई का तसव्वुर करोगे तो इस बुराई के एहसास में कमी आएगी। दुनिया में कोई इंसान सराता सफेद और सराता सियाह नहीं होता, कोई सराता खैर और सराता शर नहीं होता। हर एक में कुछ ना कुछ भलाई भी होती है, अगर बुरा है तो भलाई भी होगी, बुरा है तो भलाई भी होगी, भला है तो कोई बुराई भी होगी, दोनों चीजें साथ हुआ करती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पहले उसकी अच्छाइयों का ध्यान करो, अच्छाइयों का ध्यान करो तो क्या होगा कि फिर तुम्हें जरा सब्र आएगा कि भाई ठीक है ये बातें तकलीफ की जरूरत है लेकिन फला बातें बड़ी काबिल कदर है मेरी बीवी के अंदर, ज्यादा उसका सब्र आएगा। एक आदमी का बड़ा अच्छा इलाज किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक साहब आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, आकर अपनी बीवी की शिकायत करने लगे कि जी मेरी बीवी फला इसमें यह खराब बात है, बड़ी बड़ी खराब बात है उसके अंदर। तो हुजूर ने फरमाया कल लिखा, अगर ये इतनी खराब बात है तुम्हें मेरी नाकाबिल बर्दाश्त है शराब दे दो। तो अब दिमाग रोशन हुआ कि अब अगर मैं तलाक दे दी और वो चली गई तो क्या गुजरेगी। तो कहा यार थोड़ा ला अस्बिर आना, क्या फिर उसके बगैर सबर भी नहीं आता। तो आपने फरमाया ऐसा हम सीखा रोक के रखो उसको, जब ये खराबी है और साथ में उसके बगैर सबर भी नहीं आता तो फिर अब इसका कोई इलाज सिवाय इसके नहीं है कि अब रखो और उसकी खराबी को बर्दाश्त करो। इसलाह करने की जितनी कोशिश हो सकती है कर लो, उसके बाद बर्दाश्त करो और रखो उसको। ये ध्यान उसको ये कहा कि लोग कहते हैं कि एकदम से हुजूर ने तलाक देने का मशवरा दे दिया उसको, उसने खराबी बयान किया आपने कहा फौरन के तलाक दे दो। लोग कहते हैं फौरन तलाक देने का मशवरा दे दिया आपने उसको, वो मशवरा इसलिए दिया कि आप जानते थे कि इस वक्त उसका सारा ध्यान लगा हुआ है उसकी बुराई की तरफ और उसकी वजह से इसके दिल में उसकी बुराई इस तरह बैठ गई है कि अच्छाई की तरफ ध्यान जा ही नहीं रहा। इसलिए फरमाया कि एक आखिरी बात कह दी कि अच्छा जब इतनी बुरी है तो दे दो तलाक उसे। तो अब दिमाग उसका समझा कि अब मैं अगर तलाक दे दूंगा तो देखो वो मेरा ये काम करती है, मेरा ये काम करती है, मेरे लिए इतना फायदेमंद है, यह है वो सब फायदे मेरे जाते रहेंगे तो क्या करूंगा, कैसे जिंदगी गुजारूंगा। ये अब दिमाग में आई उससे, तो उसने कहा अल्लाह मुझसे सब्र भी नहीं होता उसके बगैर, कहा कि बस रोक के रखो। तो ये इलाज ने फरमाया कि जब किसी की बुराइयां तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती हैं, बुराई की तरफ ध्यान लग जाता है तो अच्छाइयों से आंखों पर पर्दे पड़ जाते हैं। उन अच्छाइयों का तसव्वुर करो, जब अच्छाइयों का तसव्वुर करोगे तो कदर आफियत मालूम होगी क्या है, फिर उसका पता चलेगा कि भाई तकलीफ तो पहुंचनी है, कोई ना कोई बात तो तबीयत के खिलाफ होगी, उस तबीयत के खिलाफ बात को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये भी अर्ज कर दूं कि तबीयत के खिलाफ होने में ये जरूरी नहीं है कि जब किसी काम किसी दूसरे आदमी की किसी बात को तबीयत के खिलाफ समझ रहे हो तो वो लाजमी गलती पर हो। तबीयत का खिलाफ है ना तो तुम समझ रहा हो तुम वो गलती पर है, वो समझ रहा है कि तुम गलती पर हो, ये भी हो सकता है क्योंकि तबीयतों का फर्क है जी। भाई एक आदमी को किसी आदमी को एक खाना पसंद है, दूसरे को दूसरा पसंद है। एक आदमी को करेले बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े मजेदार खाने में उसको मालूम होता है, दूसरा आदमी कहता है नहीं तो कड़वे हैं मुझसे नहीं खाए जाते है कि नहीं, तबीयत का खराब। अब ये जरूरी नहीं कि जो ये कह रहा है कि करेले मुझे अच्छे लगते हैं वो कोई वो गलती पर है और जो, या जो कह रहा है मुझे अच्छे नहीं लगते वो गलती पर है, दोनों गलती पर नहीं है, दोनों का मिजाज का फर्क है, पसंद का फर्क है, तबीयत का फर्क है, वो भी अपनी जगह सही है, वो भी अपनी जगह सही है, दोनों में कोई किसी को ये नहीं कह सकते कि ये गलती पर है। तो इसी तरह तबीयतों का इख्तलाफ जहां मुबाहात में होता है, मुबाहात में तबीयतों में इख्तलाफ होता है, वहां किसी एक करीब को हक पर और दूसरे को बातिल पर नहीं कह सकते, नहीं कह सकते दोनों अपनी जगह। सही हो सकता है। तो अक्सर और बेशतर मियाँ बीवी के ताल्लुकात में यह होता है कि तबीयत में खराब होता है। एक तो यूं है कि हर इंसान की दूसरे इंसान की तबीयत में खराब होता है। एक एक जब सिर्फ भी बदल जाए कि एक मर्द है और एक औरत है, तो सिर्फ के बदल जाने की सूरत में यह खिलाफ तबीयतों का और ज्यादा बढ़ जाता है, और ज्यादा बढ़ जाता है। औरत की एक फितरत है, उसकी एक नफ्सियात है, मर्द की एक फितरत है, उसकी एक नफ्सियात है, वो अपने फितरत के मुताबिक सोचता है, ये अपनी फितरत के मुताबिक सोचते हैं। तो इस वास्ते फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम वो करो, सिर्फ बुराइयों को ना देखो, अच्छाइयों को भी देखो। और एक बड़े मजे की बात याद आ गई, जब हजूर अब्दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी औरत मर्द के ताल्लुकात के, औरत को तशबीह दी कि औरत जो है वो उसकी मिसाल पसली की है। इतनी हसीन बात फरमाई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाए सरकार द्वारा फरमाया कि अल मरअतु का विला, औरत जो है वो उसकी मिसाल पसली की है। इन जहब का तुकी मुहा कसर था, अगर तुम उसको सीधा करना चाहोगे तो तोड़ दोगे उसको, बस ये टूट जाएगी। इन तरफ कहा स्तम चाहता बिहा अलाइवन कमा पा रहा, अगर उसको अपने हाल पर छोड़ दोगे तो बावजूद उसके कि तुम्हें टेढ़ी नजर आ रही है फिर भी उससे फायदा उठाओगे। यह हदीस में आता है। तो बाद लोग ये समझते हैं कि औरत को हुजूर अब्दा सलाह में टेढ़ी पसली कह दिया, टेढ़ी पसली कह दिया, तो लोग समझते हैं कि औरत की मजम्मत कर दी, औरत की बुराई कर दी कि औरत जो है वो टेढ़ी है, टेढ़ी पसली। लेकिन ये ना सोचा, अब बाद मरतबा लोग जो है वो इसको वाकई इसी माना में इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास खत आते हैं, लोग कहते हैं कि वो शौहर जो है बाद वो बीवी से खिताब इस तरह करते हैं कि ए टेढ़ी पसली तुझे मैं सीधा करके रहूंगा, ये जुमला लिखते हैं बाद अल्लाह। तो लोग समझते हैं कि ये मजम्मत का कलमा है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुराई का कलमा, औरत की कोई बुराई। हालांकि ये गौर न किया कि टेढ़ी किस चीज को कह रहे हैं, पसली को। पसली अगर टेढ़ी ना हो तो वो पसली कहलाने के लायक नहीं। पसली का हुस्न यह है कि वो टेढ़ी हो, पसली की सेहत यह है कि वो टेढ़ी हो। अगर पसली सीधी हो जाए तो वो बीमार है, वो किसी काम की नहीं। तो दरहकीकत ये कहना जो मंजूर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये टेढ़ा होना और सीधा होना ये भी एक इजाफी चीज है। टेढ़ा होना और सीधा होना ये क्या है, ये एक इजाफी चीज है। इजाफी चीज होने के क्या माना कि एक ही चीज एक निगाह से देखो तो सीधी, दूसरी निगाह से देखो तो टेढ़ी। ये मस्जिद में हम बैठे हैं ना, यहाँ पर मस्जिद में यहाँ बैठे हैं, तो ये जो सामने इमारत है ये सड़क अगर यहाँ से नजर आ रही हो तो सड़क हमें टेढ़ी नजर आएगी। हम मस्जिद के अंदर बैठे हैं तो मस्जिद की निस्बत से सड़क कैसी है, टेढ़ी है। और सड़क से देखो तो नजर आएगा कि सड़क सीधी है और मस्जिद टेढ़ी है। चीज एक ही है लेकिन एक जगह से खड़े होकर देखो, सड़क से देखो तो मस्जिद टेढ़ी और मस्जिद से देखो तो सड़क टेढ़ी। हालांकि न सड़क टेढ़ी न मस्जिद टेढ़ी, वो सड़क का हिसाब ऐसा ही था कि वो इस तरह होनी चाहिए थी और मस्जिद का हिसाब ऐसा ही था कि वो क़िबला रुख होनी चाहिए थी। लिहाजा इसकी सीधी मस्जिद का सीधा होना यही है कि वो आम सड़कों से टेढ़ी होकर क़िबला रुख हो। तो टेढ़ा होना और सीधा होना ये कोई मुतलक चीजें नहीं है, ये इजाफी चीजें हैं। एक चीज एक लिहाज से टेढ़ी, दूसरे लिहाज से सीधी। तो कहा यह जा रहा है कि तुम्हारी तबीयत क्योंकि मुख्तलिफ है औरत की तबीयत से, ये यूं कह लो कि औरत की तबीयत क्योंकि मुख्तलिफ है तुम्हारी तबीयत से, लिहाजा तुम्हारे लिहाज से वो टेढ़ी है लेकिन हकीकत में वो टेढ़ उसकी फितरत का हिस्सा है। जिस तरह के पसली की फितरत का हिस्सा यह है कि वो टेढ़ी हो। अगर पसली टेढ़ी ना हो तो पसली का अमल अंजाम देने से फासिर हो जाएगी अगर ये सारी पसलियां जो है वो किसी की पसली सीधी हो जाए तो क्या वो उसको फ्रैक्चर कहेंगे, ये फ्रैक्चर हो गया और उसको किसी तरह उसे टेढ़ा करने की फिक्र करेगा डॉक्टर सर्जन तो किसी तरह दोबारा टेढ़ी हो जाए, क्यों? इस वास्ते की उसकी फितरत ही है। तो मतलब ये नहीं है बुराई करना मकसूद नहीं है बल्कि कहना मकसूद यह है कि तुम्हारी तबीयत के लिहाज से औरत की तबीयत जो है तुम्हारे मुकाबले में मुख्तलिफ है, ज्यादा वो तुम्हें टेढ़ी मालूम होती है और इसीलिए फरमाया कि उसको सीधा करने की फिक्र मत करना, क्योंकि इसको सीधा करना ऐसा ही होगा जैसा कि कसली को सीधा करना, तो कसली को सीधा करोगे तो कसर कहा उसको तोड़ डालोगे और अगर उसको अपने हाल पर छोड़ दोगे तो इस समता कभी हाल आईवज बावजूद टेढ़ा होने के उससे फायदा उठाओ। वो एक बड़ी बी का किस्सा लिखा है हमारे बचपन की जो अरबी सिखाने की किताब जो होती थी मुफीद तालिबीन में किस्सा लिखा था कि एक रुकाब था वो एक कहीं से उड़ के चला गया किसी बुढ़िया के पास पहुंच गया तो वो बड़ी बी जो थी उन्होंने उसको पकड़ लिया पालना शुरू किया। अब देखा तो उसकी चोट जो है टेढ़ी है अब पंजे भी टेढ़े हैं तो बड़ा तरस खाया उसके ऊपर रुकाब के ऊपर कि ये बेचारा परिंदा है अल्लाह की मखलूक है इसको खाने की जरूरत होती होगी तो ये चोंच टेढ़ी है इसकी खाता कैसे होगा और चलने की जरूरत होती होगी तो ये पंजे इसके ऐसे टेढ़े हैं तो टेढ़े पंजे से चलता कैसे होगा। लिहाजा आखिरकार उसने कहा कि इस बेचारे की इस मुश्किल को आसान करूं तो वो कैंची लाके पहले तो उसकी चोंच काटी और फिर उसके पंजे जो है वो काटे। अब जो चोंच काटे तो खून बह पड़ा और पंजे काटे तो वहां से खून बह पड़ा। अब जितना कुछ चलता था बेचारा वो भी चलने से मजबूर हो गया। तो ये मिसाल दी जाती है उस आदमी की जो नादान की मोहब्बत करता है, नादान मोहब्बत करता है, बेअकली के साथ मोहब्बत करता है, मोहब्बत तो की मगर नादानी के साथ। ये ना समझा कि ये टेढ़ जो है उसकी फितरत का हिस्सा है, उसका हुस्न इसी टेढ़ में है। अगर ये टेढ़ा ना हो तो उकाब कहलाने का मुस्तहिक नहीं। क्या हुआ भाई? अच्छा आ जाइए इंशाल्लाह, आ जाएगी ना इंशाल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो गरज यह है कि वो उकाबत का हुस्न ही इसमें है, अल्लाह ताला ने उसको बनाया ही ऐसा है कि उसकी चोंच टेढ़ी है उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो उसके साथ जुल्म होगा, जाती होगी। खैर बात लंबी हो गई, कहना यह चाह रहा था कि जब भी दो आदमी एक साथ रहेंगे, दो आदमियों के दरमियान ताल्लुकात होंगे चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो उस ताल्लुक के नतीजे में तबीयत का इख्तलाफ जरूर जाहिर होगा। और तबीयत का जब इख्तलाफ जाहिर होगा तो क्या होगा? तकलीफ पहुंचेगी। अब दो ही रास्ते हैं कि या तो हर तकलीफ पे लड़ो मरो, जो तकलीफ भी पेश आए उसके नतीजे में लड़ो और आपस में सिफारिश का उसको सबब बनाओ, नाचाकी का सबब बनाओ। ये करोगे तो फिर दुनिया के अंदर कहीं अमन और चैन और सुकून नहीं होगा। अल्लाह तो एक रास्ता तो यह है कि जब भी तकलीफ पहुंचे लो इंतकाम उससे और बदला लो तकलीफ का, बदला लो तो लड़ाई झगड़ा मुस्तकिल खड़ा है। लेकिन दूसरा रास्ता यह है कि भाई ठीक है तकलीफ तो पहुंचनी है, जब तबीयतें मुख्तलिफ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जब तबीयतें मुख्तलिफ हैं तो तकलीफ तो पहुंचनी है और जिंदगी भी गुजारनी है। हमेशा की जिंदगी है नहीं है, तो सारी हमेशा हमेशा यहीं रहना हो, कुछ दिन के लिए आए हैं इस दुनिया में, न जाने कब यहां से रवाना हो जाएं। तो इस थोड़े दिनों की जिंदगी में अगर थोड़ी बहुत तकलीफ पहुंच रही है किसी दूसरे से, तो उसे अल्लाह के लिए सब्र कर लो बस। तो अल्लाह के लिए थोड़ा उसके ऊपर सब्र कर लो, जो तकलीफ पहुंची है सब्र कर लो, ठीक है। दिल में बड़ा इश्तियाल होगा, गुस्सा आएगा, दिल चाहेगा कि इसका मुंह नोच डालूं, इसको बुरा भला कहूं, इसकी गीबत करूं, इसकी बुराई करूं, इसको बदनाम करूं, इससे मुझे तकलीफ पहुंचाई, चारा दिल बहुत कर भी लिया तुमने, क्या मिला सिवाय इसके कि लड़ाई झगड़ा फैला माशरे में, और तो कुछ ना मिला, सिर्फ यह कि जरा सा दिल का जज्बा ठंडा हो गया होगा, वो भी ठंडा होता नहीं। जब एक मरतबा ये दुश्मनी की आग भड़क उठती है तो फिर वो ठंडी नहीं हुआ करती, वो बढ़ती रहती है, वो भी ठंडी नहीं होगी, थोड़ा सा ये चलो फायदा हासिल हो गया, लेकिन उसमें तुमने जो ज्यादतियां की उन ज्यादतियों का वहां जाकर जो हिसाब देना पड़ेगा और वहां जो उसके लिए अजाब झेलना पड़ेगा अलैहि बिल्लाह अलीम, वो कहीं ज्यादा है बनिस्बत इसके के थोड़ा सा सब्र कर लेते की जाते कि चलो भाई इसने 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 मैं जो काम किया मेरी तबीयत के खिलाफ, चलो हो गया, अब मैं सब्र करता हूँ, अल्लाह मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला उसके ऊपर भरोसा रखता हूँ, सब्र करता हूँ। और सब्र कर लिया अल्लाह अकबर, सब्र करने वाले के बारे में फरमाया इन्नमा युसब्रूना अजरहुम बिगैर हिसाब, सब्र करने वालों को अल्लाह तबारक व ताला उनका अजर बेहिसाब देता है, बेहिसाब, कोई गिनती नहीं। अल्लाह ताला अगर चाहते तो गिनती भी बयान कर देते, हम लोग तो आजीज है गिनती से ना, हमारे पास तो जिन्हे चुने चुने आदत है, हजार लाख करोड़ अरब खरब आगे बन, और कोई लफ्ज है नहीं हमारे पास, अल्लाह ताला चाहते तो पैदा कर देते कोई लफ्ज और भी ज्यादा, नहीं कहा कहते कोई गिनती ही नहीं, इतना हिसाब इतना अजर है कि कोई गिनती ही नहीं, इन नमायू पर साजुर अजर बेदायर हिसाब। तो बताओ अगर तुमने उसने तुम्हारे एक मुक्का मारा था तुमने भी एक मार दिया होता है जी, क्या हुआ, चलो जायज तो था एक मुक्का मार देना, लेकिन अगर तुमने सब्र कर लिया तो सब्र करने के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं इतना दूंगा कि गिन नहीं सकोगे, यू पर साजुर अजर बेदायर हिसाब, जिन नहीं सकोगे। अगर ये सब्र का की फजीलत सोच कर पी जाओ उसको तो उसका अंजाम कितना बड़ा ऊंचा अंजाम। और क्यों इस फिक्र में पड़े कि भाई दूसरे से तकलीफ पहुंच रही, अरे दूसरा कोई तकलीफ तुम्हें पहुंचा रहा है या पहुंच रही है, चलो जितनी तुमसे उसको दूर करने का इम्कान है वो तुम्हें इजाजत दी है शरीयत ने, उसका रास्ता बंद करने की कोशिश करो, लेकिन अपने औकात को उस आदमी के दर पर आजार होने में सर्फ करना औकात का इससे बड़ा जिया कोई नहीं। मालूम हुआ कि भाई फला आदमी तुम्हारी बुराई कर रहा था, वजह से हमने सुना फला आदमी बुराई कर रहा था, अब अगर तुम्हें पता ही ना लगता कि बुराई कर रहा था तो क्या होता, कुछ भी ना होता ना, उससे किसी ने जिक्र कर दिया कि बुराई कर रहा था इस वास्ते दिल पे चोट लग गई। अब एक रास्ता तो यह है कि अब तुम खोज में पड़ जाओ, भाई वहां और कौन कौन मौजूद थे उनसे भी पूछे, भाई तुम बताओ क्या कहा था, तुम बताओ क्या कहा था, तुम बताओ क्या कहा था, हर एक से गवाही लेते फिरो और उनसे ताकीद में पढ़ो, सारा वक्त अपने इस काम में सर्व कर दिया तुमने, क्या हासिल निकला, कुछ भी नहीं। इसके बरखिलाफ सोचो कि भाई अगर कहा था तो वो जाने उसका अल्लाह जाने, उसके कहने से ना मैं अच्छा हो जाता हूं ना बुरा हो जाता हूं, उसके बुरा कहने से बुरा नहीं होता, उसके अच्छा कहने से अच्छा नहीं होता, मेरा मामला तो मेरे अल्लाह के साथ है, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर, अल्लाह ताला मेरा मामला अपने साथ दुरुस्त रखे तो बस सर कोई दुनिया जो कुछ भी मुझे कहती रहे तो मुझे कोई परवाह नहीं, खलके पसे दीवाना हो दीवाना बकारे, सारी मखलूक पीछे पड़ी हुई हो तब भी मेरा मामला मेरे अल्लाह के साथ है, मैं हूं। मैं दूसरा बुरा कहता है तो कहता रहे, ये बात क्या कि अगर तुम अपने काम में लग जाओ ये है सब्र अल अज़ाब, ये तुमने सब्र कर लिया, सब्र कर लिया तो कहते बेहिसाब अज़र अता फरमाएंगे, बेहिसाब अज़र अता फरमाएंगे। अगर से इजाजत दी है तुम्हें शरीयत ने, शरीयत ने इजाजत दी है कि जितना तुमको तकलीफ किसी ने पहुंचाई है उतनी ही तकलीफ तुम उसको पहुंचा सकते हो इंतकामन, बदला लेने के लिए तुम्हें इजाजत है। लेकिन ये बताओ पहले तो बदला लेके करोगे क्या, मिलेगा क्या तुम्हें? दूसरा ये कि बदला लेने के लिए वो तराजू कहां से लाओगे, वो पैमाना कहां से लाओगे जिससे पता चले कि उतनी ही मैंने भी पहुंचाई जितनी उसने पहुंचाई थी। अगर एक इंच आगे बढ़ गए, एक तोला आगे बढ़ गए तो उस पर जो पकड़ हो जाएगी आखिरत में उसका हिसाब कौन करेगा, उस बदले का? तो इस वास्ते बदला लेने की हक तो है मगर हक बड़ा खतरनाक, वो तराजू कहां से लाओगे तोलने की? इसके बरखिलाफ अगर माफ कर दो तो क्या फर्क वाला, इन सबर तुम लहुआ खैरुल लिसाबिरी, कुरान भी कहता है कि अगर सबर करो तो बदर जहां बेहतर है सबर करने वालों के लिए, आखिरत में जो बदला मिलने वाला है वो अजीम शान। हजरत हकीम उल उम्मत तंसराता सिद्दीक ने एक बड़ा दिलचस्प वाक्या लिखा है कि एक साहब थे वो किसी बुजुर्ग के पास जाया करते थे, उनके मस्जिद में हाजिर हुआ करते थे। बुजुर्ग के पास जाकर कहा कि हजरत हमने सुना है बहुत कि जो अल्लाह वाले होते हैं औलिया अल्लाह उनकी शानें मुख्तलिफ होती हैं, कोई किसी शान वाला, कोई कैसी शान वाला, कोई कैसी शान वाला, तो हमें पता नहीं लगता कौन क्या शान का है, तो कुछ हमें बताइए कि औलिया अल्लाह की शानें क्या क्या होती हैं मुख्तलिफ किस्म की। तो बुजुर्ग नगारे में किस फिक्र में पड़ गए, अपने काम से काम रखो अल्लाह अल्लाह करो, कहां से पता लगेगा औलिया अल्लाह की शान का कैसी होती है कैसी नहीं होती। नहीं जी हजरत बता दीजिए कुछ कुछ थोड़ा बहुत, ऐसे ही दिल जा रहा है पता चल। अच्छा तुम ऐसा अगर यही नहीं शौक है तो ऐसा करना कि फला मस्जिद में चले जाना फला वक्त, तो वहां तीन अल्लाह वाले तीन बुजुर्ग बैठे नजर आएंगे तुम्हें, अलग अलग बैठे होंगे अपना अलग अलग कर रहा होंगे जिक्र कर रहा होंगे, तो ऐसा करना कि उनमें से हर एक जो भी जिक्र कर रहा है पीछे से जाना और उनके कमर पे एक मुक्का मार देना तीनों, फिर वो जो कुछ करें तो मुझे आगे बताना। उन्होंने कहा हजरत की कहा हाँ जब तुम्हें अल्लाह वालों की शानें मालूम करनी है तो उसका ये तरीका आसान है तुम्हारे लिए, जाओ वो तीन बुजुर्ग बैठे होंगे तो हर एक के कमर पे मुक्का मार के देख। ये जनाब चले गए, अब जाके वहां देखा तो वाकई तीन बुजुर्ग बैठे थे जिक्र कर रहे थे, तो एक के पास गए डरते डरते, एक के पुश पे मारा मुक्का हल्के से, तो वो बुजुर्ग थे वो पीछे मुड़े और मुड़ के देखा और इनकी हाथ पकड़ते इनकी कमर जो थी अपनी तरफ की और एक मुक्का इनके मार दिया, फिर अपना लाला करने में लग गए जिक्र में मशहूर हो गए। दूसरे बुजुर्ग के पास पहुंचे उनके जाकर मुक्का मारा, उन्होंने पलट के देखा ही वो जिक्र कर रहे थे करते रहे, ये थोड़े से इंतजार भी करते रहे कि देखे कुछ जवाब दे, कुछ दिया जवाब नहीं, किसी मुल्क देखा ही नहीं कौन क्या कर रहा है, अल्लाह अल्लाह करते रहे अपना जिक्र करते रहे। थोड़ी देर में जब मायूस हो गया कि ये कोई जवाब नहीं दे रहा है तो उठ के तीसरे के पास चले गए, तीसरे के जाकर मुक्का मारा तो उन्होंने मुड़ के इसका हाथ पकड़ लिया मुक्का, कहा कि भाई तुम्हारे हाथ में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, तुम्हारे हाथ में कोई चोट तो नहीं लगी? मैंने कहा नहीं अगर माफ कीजिएगा मुझसे गलती हुई। नहीं नहीं मैं तुम्हारे हाथ में कोई तकलीफ ना हो। ये देख के जनाब आ गए वो बुजुर्ग से आके कहा कि जी वो मैं तो वाजिब किस्सा हुआ। तो क्या हुआ था पहले ने क्या क्या किस्सा हुआ था जी? पहले के पास गया तो उन्होंने मुक्का मारा मेरे कहा ये बताओ जितना तुमने मारा था जितना जोर था उतना ही मारा तो उससे कम ज्यादा मारा? कहा जी बिल्कुल उतना ही मारा जितना मैंने मारा था। कहा बस ठीक है। तो दूसरे ने क्या किया कि जी उसे तो पलट के देखा ही वो तो अपना जो काम कर रहे थे उसी में लगे रहे। तो तीसरे ने क्या किया कि जी तीसरा तो उल्टा मेरे हाथ चलाने लगा कि तुम्हारे हाथ में तकलीफ ना हुई हो। तो कहा देखो ये मुख्तलिफ शाने हैं अल्लाह वालों। पहले साहब जो थे उन्होंने जो अपना शरी हक था वो इस्तेमाल किया। शरी हक ये था कि कुरान ने ये कहा जो कोई तुमसे ज्यादती करे तो जितनी ज्यादती वो कर रहा है उतनी तुम भी कर सकते हो। या तो मैं तुमसे पूछा था उतना ही जोर से मारा था या उससे कुछ कम देश? तुमने कहा कि नहीं उतना ही मारा था। तो उन्होंने अपना वो हक इस्तेमाल किया, शरीयत में जायज था। लेकिन एक नुक्ता साहब ने बड़े मियां ने बताया कि ये जो उन्होंने मारा तुम्हें पलटकर तो वो भी दर हकीकत इस वजह से नहीं कि अपनी जात से इंतकाम लेना मंजूर था, अपनी जात का बदला लेना मंजूर। जो अल्लाह वाले होते हैं वो अपनी जात के लिए बदला नहीं लिया करते, लेकिन इसलिए मारा कि तुम्हारा हिसाब इसी दुनिया में चुका दें, आखिरत में तुम्हें सतवार साथ मुआवजा ना हो। कि दुनिया में बदला ले लूं तो आखिरत में इसका इसको फिर सजा ना हो, इस वास्ते उन्होंने मार दिया। और बाद अवकात ऐसा भी होता है अल्लाह के नेक बंदों के साथ मामला कि अल्लाह के नेक बंदों बंदे जब सब्र करते हैं तो उस सब्र का वबाल अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा पड़ता है, ऐसा पड़ता है कि जिसका कुछ ठिकाना नहीं। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मन आदा ली वलीयन फकद आज़न्तुहु बिल हर्ब। जो मेरे किसी वली का दुश्मन होता है मैं मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग है। तो इस वास्ते कहीं ऐसा ना हो कि कोई वबाल आ पड़े इसलिए किया। दूसरे बुजुर्ग जो थे उन्होंने कहा मियां कहां अपना वक्त इसमें सर्व करूं कि पीछे मुड़ के देखूं कि कौन मार रहा है और क्यों मार रहा है। जितना वक्त इस तहकीक में सर्व करूंगा कि पीछे कौन है और क्यों मार रहा है, इसी देर तक पांच मरतबा सुभान अल्लाह कह लूंगा तो न जाने कितने अजर के खजाने आखिर में लग जाए। लिहाजा ये पीछे मुड़कर देखना ही फजूल है, इस तरफ देखो ही मत, अपना काम में लगे रहो, अल्लाह अल्लाह करो। उनकी शान ये थी। और तीसरे बुजुर्ग ये थे कि उन्होंने कहा कि एक तरफ तो ये बात है कि सब्र करना बड़ा फजीलत का काम है बेशक, और जिक्र भी करता रहूं तो जिक्र में भी बड़ी फजीलत है, लेकिन किसी आदमी को जरा भी तकलीफ पहुंची हो तो उसके साथ हमदर्दी का इजहार नफली जिक्र से भी अफजल है। तो अगर इसने तकलीफ तो मुझे पहुंचाई थी लेकिन बिलवास्ता थोड़ी सी तकलीफ उसके हाथ में भी पहुंची होगी तो एक मौका मिला है इसके साथ हमदर्दी जाहिर करने का, वो हमदर्दी जो है वो इस जिक्र से भी अफजल है जिसमें मजबूर हूं, लिहाजा मैं इससे जाकर थोड़ी सी हमदर्दी का इजहार करूं। उन्होंने अपने शान का इजहार किया। तो कहते हैं ये हैं औलिया किराम की मुख्तलिफ शाने और हरेक का अपना अपना नुक्ता निगाह है। तो ये सब क्या है? सब्र। जब लोगों के साथ रहोगे, लोगों के साथ मिलोगे, बाह निबाह पड़ेगा, मामला पड़ेंगे तो तकलीफें भी पहुंचेंगी। जब तकलीफें पहुंचेंगी तो नुस्खा यही बता रहे हैं नबी करीम सब्र अज़ाब। और ये बताओ जरा सोचो, हर एक शख्स अपने दिल पे हाथ रख के सोचे कि अगर हर इंसान इस नुस्खे पर अमल कर ले, ये सोच ले कि दूसरे की तरफ से जो खिलाफ तबा अमूर पेश आएंगे उस पर सब्र करूंगा हत्तल इम्कान। ठीक है, एक मरहला ऐसा आ जाता है जहां इंसान सब्र नहीं कर सकता। एक आदमी सारा ही माल चोरी करके भाग रहा है, अब ये सब्र करता रहा बैठा हो तो वो बेचारा खाएगा कहां से आगे, लिहाजा उसको हक है कि वो अपना दिफा करे। तो एक मरहला ऐसा आ जाता है जहां आदमी सब्र नहीं कर सकता, कम से कम अपने आप को नुकसान से बचाने की फिक्र कर सकता है वो करे। لیکن اس کو ذریعہ بنانا ہمیشہ کی ناچاکی کا، ہمیشہ کے تعلقات کی خرابی کا، آپس میں جھگڑے پیدا کرنے کا، منافرتوں کا، یہ ہے جس کو فساد ذات البین کہا اور جس کو حالقہ کہا کہ یہ مون دینے والی چیز ہے، دین کو خراب کرنے والی چیز. تو یہ اگر غور کرو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ ملتا ہے اور ان کی عزا پر، ان کی دی ہوئی تکلیف پر صبر کرتا ہے، وہ بدرجہ بہتر ہے اس مومن سے جو لوگوں سے نہیں ملتا اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا. اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آپس کے تعلقات کی بہتری کا ایک بہت عظیم شان نسخہ بیان فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو بھی اس عظیم نسخے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بھائی ارادہ تو کیا تھا تھوڑی دیر بات کرنے کا، آپ حضرات کی برکت سے بات لمبی ہو گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کام کی بات ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا وسددنا وقنا شرور انفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يا ارحم الراحمين من فضلكم وسع رحمتكم على تمام جناحكم معاصركم. يا الله ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ عالمی ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں سے معافی صدر گزر فرما. اے اللہ ہم سب کو، ہم تمام حاضرین حضرات کو، ان سے تمام جائز مقاصد مقامیاں بھی عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں ہمیں شفا کامل عاجل عطا فرما. جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك.